अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिया गया वो अलौकिक प्रसंग जिसमें भगवान बाबा द्वारा बुक्कापट्टनम स्कूल में की गई कुछ एक सुमधुर बाल लीलाओं का वर्णन है।
नटन मनोहर निराकार के साकार रूप सत्यनारायण ने अपने बाल्यकाल की शिक्षा समाप्त की तब इस बालक को बुक्कापट्टनम भेजना ही उचित होगा, ऐसा उसके शिक्षकों ने निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार सत्या को वहां के हायर एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल कराया गया। पुट्टपर्ती से बुक्कापट्टनम 2.5 मील की दूरी पर है। अनेक कष्टों को झेलते हुए कभी कीचड़ एवं कांटों भरी राह से तो कभी बरसात में कमर तक पानी भरे तालाब को पार कर पगडंडी की राह से बगल में पुस्तकें दबाए एवं कंधे पर खाने की झोली लटकाए सत्यनारायण को वहां पहुंचना पड़ता था। बुक्कापट्टनम की शाला के एक शिक्षक श्री बी सुब्बर्णाचार्य सत्यनारायण के विषय में सन 1944 में प्रकाशित एक तेलुगु पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं। सत्यनारायण 8वीं कक्षा में मेरा विद्यार्थी था। अपने सादे वस्त्रों के समान ही सरल स्वभाव का, आडंबरहीन, सत्यनिष्ठ एवं बड़ों का आदर करने वाला बालक था। हां, आडंबरहीन। विचार कीजिए कि इस विशेषण की प्राप्ति के लिए उसने अपनी शक्तियों तथा दैवी महिमा को किस प्रकार से छिपाए रखा होगा। अपने परिचय को प्रकट करने के सुअवसर की प्रतीक्षा में केवल एक आडंबरहीन बालक के समान आचरण करने में सत्या ने जिस आत्मनियंत्रण शक्ति का प्रदर्शन किया वह प्रशंसनीय है। इसी तेलुगु ग्रंथ में ही सत्यनारायण के अन्य शिक्षक श्री बी सी कुंडप्पा लिखते हैं, इस मितभाषी बालक अन्य बालकों के पहुंचने से पहले ही शाला में उपस्थित रहता था। शाला के बाहर किसी वृक्ष के नीचे ईश्वर का चित्र स्थापित कर वहां के बालकों से पूजा करवाता था। कभी कभी हाथ के संकेत मात्र से ही विग्रह का सृजन कर पूजा करवाता था। मंगल आरती के पश्चात अपने हाथ से ही निर्मित मिठाई प्रसाद स्वरूप बांटता था। कभी अपनी खाली थैली से मुट्ठी भर भर कर मीठी बूंदी, पेपरमेंट इत्यादि सामग्री निकालकर अपने सहपाठियों को बांट देता था। यदि उससे पूछा जाए कि यह सब सामग्री उसके हाथ में कैसे आ जाती है तब वह कहता कि उसके वश में ग्राम शक्ति है जो उसे मांगी हुई वस्तु तत्क्षण प्रदान कर देती है। उसके वशीभूत उस ग्राम शक्ति का प्रभाव उसके एक शिक्षक ने एक दिन प्रत्यक्ष अनुभव किया। कक्षा में रहते हुए भी सत्यनारायण का लक्ष्य कहीं और ही रहता था। इस विषय में बाबा कहते हैं, जानते हो मैं वहां बैठकर क्या किया करता था? उस वृक्ष के नीचे बैठ पूजा करने वाले बच्चों के लिए मैं भजन और अष्टोत्तर शतनामावली की रचना किया करता था। एक दिन वे शिक्षक कक्षा में जब कुछ लिखवा रहे थे तब सत्या का ध्यान कहीं और लगा देख अपने को अपमानित मान उन्होंने कहा, जो छात्र नहीं लिख रहे हैं वे खड़े हो जाएं। सत्या उठकर खड़ा हुआ, अन्य बालक बैठे ही रहे। न लिखने का कारण पूछने पर सत्या ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे पढ़ने या लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लिखाए गए विषय पर किसी भी प्रश्न का मैं यथा योग्य उत्तर दे सकता हूं, फिर और क्या चाहिए? और भी अधिक क्रोधित होकर शिक्षक ने आज्ञा दी, ढीठ, शाला के अंतिम घंटी होने तक बेंच पर ही खड़े रहो। प्रत्युत्तर ना दे सत्या बेंच पर ही खड़ा हो गया। कक्षा में पाठ पुनः आरंभ हुआ किंतु अपने प्रिय गुरु को बेंच पर खड़ा देखकर सब सहपाठी व्यथित हो उठे। सबके मुख पर उदासी छा गई। घंटी द्वारा पाठ समाप्ति की सूचना मिलते ही सब छात्रों ने चैन की सांस ली। अगला विषय पढ़ाने के लिए श्री महबूब साहब नामक शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया। सचमुच वे पवित्र आत्मा थे। उनके विषय में ऐसा बाबा आज भी कहा करते हैं। अंग्रेजी भाषा पढ़ाने में वे अत्यंत प्रवीण थे। उनकी शिक्षण प्रणाली इतनी सरल एवं सहज थी कि लड़कों का भाषा ज्ञान थोड़े ही समय में परिपक्व हो जाता था। सत्या उनका प्रिय शिष्य था। सत्या कहीं भी हो उसका पता लगाकर वे उसको अपने घर ले जाते और अनेक खाद्य पदार्थ खाने का आग्रह करते। देखो भाई सत्या, यह सब चीजें घर धुलवाने के बाद ही शुद्ध बर्तनों में विशेष रूप से तैयार की गई हैं। मांसाहार बनाने के बर्तन उपयोग में नहीं लाए गए हैं। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। सत्या को सामने खड़ा करके उसके मुखारविंद का अवलोकन करने में उन्हें परमानंद का अनुभव होता था। सत्या के बालों से खेलते हुए वे स्वतः ही कहते, सत्या तुम अद्वितीय बालक हो, तुम्हारे द्वारा लाखों मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होगी, तुम महाशक्ति हो। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए महबूब खान साहब कक्षा में प्रविष्ट हुए, लेकिन उनके लिए पहले शिक्षक ने कुर्सी खाली नहीं की। इसके अतिरिक्त अपनी आंखों के तारे सत्यनारायण को बेंच पर खड़ा देख खान साहब को आश्चर्य एवं क्रोध हुआ। धीरे से उस शिक्षक के पास जाकर उन्होंने कहा, उठिए महाशय। तब वे शिक्षक महबूब खान के सिर की ओर झुककर कान में कहने लगे, उठ नहीं सकता खान साहब, मैं उठता हूं तो कुर्सी भी मेरे साथ उठ जाती है, चिपक गई है। इनकी इस बातचीत को तेज कान वाले कुछ विद्यार्थियों ने सुन लिया। उनमें से एक लड़के ने निर्भीक होकर कहा, गुरुजी बेंच पर खड़े सत्यनारायण को नीचे उतरने के लिए कहिए, तभी आप चिपकी हुई कुर्सी से मुक्त हो सकेंगे। हां साहब, सब कुछ छोड़कर आप इसे ही क्यों अपमानित कर रहे हैं? खां साहब ने भी पूछा, अरे भाई नीचे उतर जाओ, तुमको खड़े होने का दंड देना ही मेरी भूल थी। शिक्षक ने कहा, सत्या के नीचे उतरते ही शिक्षक का कुर्सी से उठना संभव हुआ। आपने ऐसा क्यों किया स्वामी? क्या आप उस शिक्षक पर कुपित थे? क्या यह आपके क्रोध का ही परिणाम था कि कुर्सी शिक्षक से चिपक गई? एक बार बाबा से मैंने इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने उत्तर दिया, छी छी, क्रोध की भावना मुझ में है ही नहीं। मैं क्या हूं और कौन हूं इसका थोड़ा सा परिचय देने का और आगे की जाने वाली घोषणा की भूमिका रचाने का मेरा उद्देश्य था। शाला में तथा अन्यत्र कई महीनों तक इस घटना की चर्चा होती रही। शाला को जाते और घर वापस लौटते समय सत्या अपने साथियों को साधु संतों की कहानियां सुनाया करता था। वह साथियों से आग्रह करता, प्रार्थना करनी चाहिए, एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए और सदा संतोष एवं धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए।
आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के तहत भगवान बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित श्री भगवान द्वारा बुक्कापट्टनम स्कूल में की गई कुछ एक सुमधुर बाल लीलाओं से सुसज्जित एक अलौकिक प्रसंग।